विज्ञान का जो हो वही बन सकते हो, और उसके बनने में बहुत कठिनाई नहीं है। गेहूं को गेहूं बनने में कठिनाई नहीं है, चने को चने बनने में कठिनाई नहीं है। आप जो हैं वो बनने में सरलता है, साधना उधर ले जाते। और जब आप बालक अर्थात निर्दोष आंखों में पवित्रता, रामायण क्या है? आज वैज्ञानिक भी विचार कर रहे हैं कि रामायण महाभारत क्या है? पात्रों के माध्यम से हमें आपको कुछ समझाया गया। वहां राम, लक्ष्मण, सीता जो है हमें आपको समझाने के लिए, इसलिए लीला कहा गया, द प्ले, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम द प्ले। उनके लिए लीला है, लेकिन हमें सीखना है क्या। सीता ने सोने का मृग देखा, सोने का मृग देखा, और राम से कहा कि लाओ। आप जानते हैं मैं उसका आशय बता रहा हूं। राम कहते इसकी जरूरत नहीं है, कहा नहीं इसको लाना है। कहानी आप जानते हैं, आंख ने कुछ मांग की, देखा और मांग की। सीता को हम अपनी जगह रखें। अब देखो, राम गए, लक्ष्मण गए और सीता भी चली गई। आज विज्ञान भी रामायण का अध्ययन कर रहा है, जिसमें रसियन के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, हमारी कहानियों का भी कर रहे हैं। अभी 10-15 रसियन कहानियां मुझे पढ़ने में अपनी ही आई, उसमें दो कहानी आपको बताना बहुत जरूरी है, फिर रामायण वाली बात बताऊं। बचपन में हमने और आपने बड़ी एक छोटी सी कहानी पढ़े है, खरगोश की और कछुए की। खरगोश क्या सोचता है, एक कछुआ मेरे सामने क्या है, अभी आराम कर लूं फिर मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन कहानी कहती है कछुआ चलता रहा चलता रहा, कछुआ पहुंच गया लक्ष्य पर और खरगोश सोता रहा। आज वैज्ञानिक कहते इस कहानी का मनुष्य के लिए कितना ऊंचा अर्थ है। पहला तो है कि ओवर कॉन्फिडेंस। खरगोश कहता अरे क्या मेरे सामने है, अभी मैं पहुंच जाऊंगा। कई बार हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमें पराजय की ओर ले जाता है। और दूसरी बड़ी जबरदस्त बात है, अगर खरगोश को आराम करना था तो लक्ष्य पर पहुंचने के बाद आराम करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। हे प्रिय आत्मन, आज का काम पूरा करके आराम करो। और हमारे बच्चे कहते अरे मम्मी 8 बजे तक सोने दो, बाद में पढ़ लूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता, कैसे पढ़ेगा बाद में, कैसे करेगा। एक बड़े प्यार से कह रहा हूं, ये कहानियों बताया गया नहीं, पहले अपना काम पूरा करो फिर आराम करो। कहीं आराम में इतना समय न चला जाए कि लक्ष्य ही रह जाए। मैं पहले आराम कर लूं फिर पेपर दूंगा, और सो गए तो आधा पेपर खत्म, वहां गए घटाउट वर्क नहीं आ सकते अंदर। आज बात कर रहा हूं, एक कागले वाली कहानी का इलस्ट्रेशन है। घड़ा में पानी है, कागले को जरूरत पड़ी, वह इधर उधर नहीं दौड़ा, जो कुछ प्राप्त है उसको कैसे ऊपर लाए उसकी एक व्यवस्था की, कंकर लाए। ये हमारे आपके लिए, दूसरों की तरफ मत देखो, तुम्हारे पास जो कुछ है उसी में व्यवस्था करके सफलता की बात करो। भगवान बुद्ध ने आत्मदीपो भव की जो बात की, वही अमावस की रात है और आपके हाथ में दीपक है। अमावस की रात का विचार मत करो, जितने कदम चलोगे प्रकाश सामने होगा। गति की बात करो, चलने की बात करो, और जब आप चलेंगे तो प्रकाश आपके सामने होगा, और रुके रहोगे तो अमावस का स्मरण करके एक कदम भी आके नहीं चलो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो कुछ है तुम लेकर चलो, हम मंजिल पर पहुंचोगे तो पीछे चांद होगा और सामने सूरज तुम्हारा स्वागत करेगा, लेकिन बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। चलने की बात की गई, बैठने की बात नहीं की गई। अभी थोड़े दिन पहले एक विदेशी आया, कहे स्वामी जी आपसे एक प्रश्न करें। मैंने कहा करो। कहते मैंने मंदिर में जाकर देखे, आपके भगवान हमेशा मंदिर में खड़े रहते हैं। मैंने कहा हाँ। भगवान कहते हैं कि 24 घंटे मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन हम लोग तो बैठ करके मदद मांगते हैं, तो क्या भगवान मदद करेगा? भगवान मंदिर में खड़े हैं, जब चाहिए मेरी मदद तुम लो। और एक मनोविज्ञान है आपके लिए, लोग क्या कहते हैं, तुम आगे चलो मैं बैठा हूं। मनोविज्ञान कहता पहले से ही जो कह रहा है मैं बैठा हूं वो आपके लिए क्या उठेगा, इसलिए सावधान रहना, अपने बल पर चलना। कहता तुम चलो मैं बैठा हूं, वो कहा कहता कि मैं खड़ा हूं। अपने बल पर है वो ताकत, वही मैं आपको जगाना चाहता हूं, वही बताना चाहता हूं। मैं नहीं पूछूंगा कुछ कहां जन्म हुआ क्या पर, लेकिन इतनी अपरंपार शक्ति है, कमी हो रही है राग द्वेष ईर्ष्या में। आप पढ़े लिखे लोग बैठे, डॉक्टर बैठे, पूछिए 10 मिनट का क्रोध हमारी कितनी ऊर्जा को खत्म करता है, आधे घंटे की चिंता हमारी कितनी ऊर्जा को खा रही है, भूत भविष्य का चिंतन किस तरह वर्तमान का सत्यानाश कर रहा है, हमारी सहजता को समाप्त कर रहा है। हे प्रिय आत्मन, बालक बनो, सहज बनो, वर्तमान में आओ। एक एक दिन करके 40 साल बीत गया, कल क्या होगा, कल क्या होगा, और 40 बीत जाएंगे, क्या कर पाओगे? कितनी अखूट शक्ति परमात्मा ने हमें आपको दी है, लेकिन उसका उपयोग 12% तक भी 12.5 तक नहीं कर रहे। और जिन लोगों ने इसका उपयोग किया उनके पास और कुछ सोचने के लिए न भूत न भविष्य और न किसी के प्रति सोचने के समय नहीं निकला, यह भी विज्ञान कह रहा है। कितनी अखूट शक्ति आप में उसका उपयोग कर रहे हो, बड़े प्यार से कर रहा हूं, अपना समझ के, परिवार समझ के कर रहा हूं। मैं एक एक को जगाना चाहता हूं, एक एक अंदर की ऊर्जा को प्रकट करना चाहता हूं। अब एक विज्ञान की बात और बताकर फिर आऊं, अस्तित्व पर आऊंगा। यहां बच्चे भी हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, उनके लिए खास। वैज्ञानिकों ने एक निरीक्षण किया कि किसान का लड़का वाइस चांसलर, किसान का लड़का कलेक्टर, किसान का लड़का डॉक्टर, लेकिन 5% ही डॉक्टर लड़का डॉक्टर, इंजीनियर लड़का इंजीनियर, 95% नहीं है। अब जो बताने जा रहा हूं इसे सुनिएगा, प्रकृति चाहे आप महल में पैदा हुए, चाहे झोपड़ी में, चाहे आप राम की तरह पैदा हुए या कृष्ण की तरह पैदा हुए, अब वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट संघर्ष से है। जो जितना संघर्ष करेगा उतना ऊंचा जाएगा, जो सुविधाओं में रहेगा वो आगे नहीं जाएगा। फिर मनोविज्ञान आ गया हमारे और आपके लिए, वही जो कहा था, जो कुछ है लेके चल पड़ो। फिर मनोविज्ञान कहता है प्रिय आत्मन, सुविधा ढूंढने वाला, जा याद रखना मनोविज्ञान के बाद, जो कुछ है लेके चल पड़ो, सफलता मिलेगी, लेकिन सुविधा ढूंढने वालों, मुझे जब सुविधा होगी तब चलूंगा। मनोविज्ञान का सुविधा ढूंढने वाला कभी जीवन में बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। जो कुछ है लेके चल पड़ो। सीता की बात, कष्ट क्यों आया, जा विचार करो, उस कष्ट क्यों इधर ले गया, वही बात को मैं समझाना चाहूंगा कि कष्ट तपस्या भी बन जाता है, कष्ट कष्ट भी बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, आप पानी का मंथन करेंगे तो नवनीत मक्खन नहीं निकलेगा, आपके बगल में कोई दही का मंथन कर रहा है, इसलिए नवनीत निकलेगा। कर्म कैसे करें? सीता ने हमें बताया क्या? अगली बात विचार कीजिए, मैं यही पूछ रही, आदित्य स्वकृते यासा मर्यादा, ये लक्ष्मण रेखा क्या है? मर्यादा। आज के वैज्ञानिकों के मत से याद रखो प्रियात्मन, सबके लिए कह रहा हूं, जब तक हम आप अपनी मर्यादा में रहेंगे, रावण का अर्थ दुख है, वैसे 10 अर्थ है, पहला अर्थ है दुख। हम आप अपनी मर्यादा में रहेंगे तो दुख की ताकत नहीं हमारे पास आए, रावण की ताकत नहीं हमें छू सके। सीता को फिर अपने ऊपर लीजिए, रावण अंदर नहीं आ सकता, दुख अंदर नहीं आ सकता, दुख हमारे आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो दुख हमें आपको छोड़ने वाला भी नहीं। दुख हमारे आपके पास नहीं आ सकता। एक भोजन की बात लो, बड़े प्यार से कह रहा हूं, आज मनीषा जन्मदिन है तो आज खाओगे कोई तकलीफ नहीं, आगे पीछे की बात कर रहा हूं। एक भोजन है, अब आपकी क्षमता एक लाडू की है, अब 3 लाडू खा जाओ, मर्यादा टूटी, फिर देखिए बोलने की मर्यादा, जो महाभारत से आया, इशारा करता हूं, अंधे की संतान अंधी होती, या विचार करो, चाहे आप राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, शंकराचार्य जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कहीं भी है, यही सब सीखना है कि दुख हमारे पास नहीं आ सकता, लेकिन मर्यादा तोड़ेंगे तो दुख छोड़ने वाला भी नहीं। हमारी कहीं मर्यादा टूटी है जो हम दुख उठा रहे हैं, बाकी मर्यादा में रहते तो कोई दुख हमारे पास आने वाला नहीं था। अब यही मर्यादा में रह करके जो कष्ट उठाओगे वो तपस्या बन जाएगा। यही बात दूसरे ढंग से कहिए समझने के लिए, मर्यादा में अगर सीता जी रहती, इस सीता पर कोई आक्षेप नहीं है, समझना है हमें आपको, सीता जी अगर मर्यादा में रहती तो राम भी वापस आते, लक्ष्मण भी आते, कोई दुख नहीं था। हे प्रियात्मन, हमने मर्यादा तोड़ करके राम और लक्ष्मण का अर्थ यहां क्या हुआ? हमने, वो अपने आप आएंगे, आप अपनी मर्यादा में रहो, यह है राम सफलता की बात, मनोविज्ञान की बात। आप अपनी मर्यादा में रहो, जागृत रहो, सो मत जाओ, राम लक्ष्मण आएंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन मर्यादा तोड़ोगे तो राम लक्ष्मण भी नहीं और आप भी नहीं, फिर दुखी दुख है। लंका का दुख भी होता है, रावण का दुख भी होता है, सताने वाला भी होता है, इसका ख्याल रखिए। देखने की भी मर्यादा है, बोलने की भी मर्यादा है, सुनने की भी मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन हमें आपको होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं भारत का कानून नहीं जानता, भारत के कानून की मर्यादा जानना चाहिए। फिर आप देखें, फिर अगर दुख आए तो आप मुझे बताइए, फिर राम आपसे दूर हो जाए, लक्ष्मण दूर हो जाए, फिर बताइए। और इस मर्यादा का पालन करने वाला समस्याएं नहीं पैदा करता। समस्याएं तभी पैदा होती हैं जब हम अपनी मर्यादा का पालन नहीं करते, फिर सब दुनिया भर की बात करते हैं। आजकल के जो युवक हैं, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, बड़े प्यार से कहूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, आप जो चाहें बन सकते हैं, अपने जीवन को जितना ऊंचा उठाना चाहें उठा सकते हैं, कहीं भी आपका जन्म हुआ। आज आप पढ़ रहे हैं, एक विद्यार्थी की मर्यादा क्या है? आज इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं? हमारे पास शिक्षण है, फिर भी इतनी परेशानी क्यों? चार वेदों का ज्ञाता तो रावण भी था, लेकिन संस्कार की बात। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय जो संस्कार है उसमें रह करके आपका शिक्षण आपको महान बना देगा। ये संस्कार कैसे प्राप्त होगा, बच्चों को क्या सिखाओगे? पढ़े लिखे लोगों के बच्चे चंचल को विज्ञान के बाद, वो आपका कहना क्यों नहीं मानता, आपके विरुद्ध क्यों जाता है? ये विज्ञान की बात है। बच्चे जन्म से पवित्र हैं, जैसा शुरू में कहा था उस बात का ध्यान रखते हैं। बड़ी एक वैज्ञानिक बात छोटी से बताएं, जहां हमारी आपकी भूल हो जाती है, अनजाने में गलत संस्कार हो जाता है, और उस गलत संस्कार के कारण आज हमारे सामने समस्याएं पैदा हो गई। आपने पेपर पढ़ा होगा, बच्चों के हाथ में रिवाल्वर दिया गया और 12 साल मछली रिवाल्वर आकर खून कर गया। आज विज्ञान मान रहा है कि बच्चों के संस्कार जन्म के बाद जैसा सुनेगा देखेगा वैसा बनेगा। बच्चों के हाथ में कोई अच्छी चीज दो, क्योंकि विज्ञान कहता है हैंड और हेड का संबंध है, जो चीज हाथ में दोगे वैसा विचार आएगा। हमने पहले नकली रिवाल्वर दिया और 12 साल में असली रिवाल्वर आ गया, पड़ा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह। मैं तो एक संकेत कर रहा, मान गए कि भारत में क्यों कहते हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम का पाठ करो, गीता का पाठ करो, क्यों? हाथ में गलत चीज आई तो विचार आपके गलत हो जाए। हम एक और गलती कर रहे हैं, बड़ी सूक्ष्म गलती। कुछ बच्चों पर प्रयोग करके देखा गया, जिनके माता पिता इतने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चा ऐसा क्यों हो गया? फिर वही पर्यावरण की बात, एनवायरमेंट की बात, सुनने और देखने की बात आई। और बहुत हमें सावधान रहना है। कैसे? आपका बच्चा 2 साल का है, जमीन पर गिर गया, अनजाने में प्यार से हमने जमीन को पीटना शुरू, ऐ जमीन मेरे बच्चे को क्यों चोट पहुंचाई? 2 साल के बच्चा टेबल से टकराया, हमने टेबल उठा के भेज, टेबल मेरे बच्चे के सामने सज जा। हमारे बच्चे को पड़ोसी ने कुछ कहा तो बच्चे को ले जाकर पड़ोसी से कहते आज के बाद मेरे बच्चे कुछ कहोगे तो देखना कि मैं कितना अच्छा हूं और कितना खराब हूं। मनोविज्ञान कह रहा है प्रियात्मन, अनजाने में 2 साल के बच्चे में का आपने गलत संस्कार डाल दिया। क्या गलत संस्कार डाला? कि बच्चे के अंदर एक संस्कार आया कि जो मुझे चोट पहुंचाए उसको चोट दो, पड़ोसी कुछ गलत बोले तो थप्पड़ मारो, गाली दो। तो हे प्रियात्मन, अब विज्ञान मान रहा है, मनोविज्ञान, भारत में कहा जाता है कि पड़ोसी को अपने से ज्यादा प्यार करो, मूल बाइबल में, मूल तो अपना है, बाइबल में ज्यादा है, अतिथि को देव मानो। जमीन सब सुबह थो नमस्कार करो। बच्चों में, हमारे छोटे बच्चों में नमस्कार की भावना आई, अतिथि देव भव की भावना आई, वसुधैव कुटुंबकम की बात आई, कितना ऊंचा संस्कार बनेगा। यही ऊंचे संस्कार बनाने के लिए सावधान होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहें कैसे करें, हमारा 2 साल का बच्चा जमीन पर गिरा, अरे जमीन तो मां है, मां देख रही है कि मेरा बच्चा जल्दी उठ सकता है कि नहीं, उसे कुछ प्लस कुछ पॉजिटिव बात करो। और उसके सामने जमीन पर आप फटका लगाएंगे तो वही 18 साल होकर हमें फटका लगाएगा, पिताजी मेरे विरुद्ध जाओगे तो ऐसा, क्योंकि जन्म से आपने संस्कार दिया। ये विज्ञान कितना सूक्ष्म अध्ययन कर रहा है। इसलिए जो समाज में वडील है, समाज में बड़े हैं, उनके बच्चों पर जब अध्ययन किया गया तो बचपन की थोड़ी हमारी भूल आज उन बच्चों को हमारे खिलाफ कर दिया। एक और बात, लोग मेरे पास आते हैं, महाराज ये दोनों भाई आपस में लड़ते बहुत हैं, इनको आप समझाइए कि मिलकर रहे। मैं कहता हूं दोनों बच्चों को आप जरा मेरे आश्रम से बाहर खेलने के लिए भेजो, इनके सामने बात नहीं करना चाहता। मैंने कहा कभी आपने ऐसा किसी के सामने कहा कि ये अच्छा है ये बुरा है? कहा कहा मनोविज्ञाने आपसे बड़े प्यार से कह रहा हूं। उदाहरण के तौर पर आपका एक बच्चा 8 साल का है और एक बच्चा 5 साल का है, मेरे प्रिय आत्मन मेहमान के सामने किसी के सामने जब कहोगे मेरा ये अच्छा है ये बुरा है, जिसे बुरा कहोगे वो अपने बड़े भाई या छोटे भाई जिसको भी हो, जिसे आप बुरा कहोगे अपने भाई के साथ कभी आदर प्रेम मन में आने वाला नहीं और बड़े होने पर कभी एक साथ रहने वाले नहीं, क्यों? बचपन में जिसका बीज हमने बो दिया, इसलिए मनोविज्ञान कहता हमारे दोनों बच्चे अच्छे हैं। किसी बच्चे के सामने तुलना करने की कोई जरूरत, कौन अच्छा कौन बुरा। और इसीलिए हमारे पहले बच्चे थे किस तरह, एक को गोद में रखते थे एक को बगल में, अरे भाई ये छोटा है इसलिए गोद में, ये भी बड़ा होगा तो ऐसा होगा, कितने प्यार से समझाते थे, कंधे पे ले चलते थे। लेकिन आज वो बात नहीं रही। हमारे कमिश्नर हैं, उनका बच्चा भी थोड़ा हुआ तो मेरे पास आए, बड़े प्यार से कह रहा हूं, कहे स्वामी जी 20 साल का लड़का मेरा कहना नहीं मानता। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, आपको भी कहता हूं, मैंने कहा कि मैं आपको जानता हूं, इसके दादा थे, इसके सामने जब आपके पिताजी आपको कहते थे तो कितना कहना माने? कहा तो स्वामी जी फिर हिसाब किताब बराबर है। बच्चा देख रहा है कि मेरा बाप नहीं कहना अपने बाप का मान रहा, तो मुझे भी इसकी कहने मानने की जरूरत नहीं। जो चाहते हो बच्चा करे वो घर में करो, ये संस्कार आप देंगे, नहीं तो द्रोणाचार्य जी जैसे कॉलेज का गुरु मिलेगा लेकिन वो दुर्योधन को ठीक नहीं कर सकेगा। संस्कार गलत हो गया। और ये माता पिता, ये जो बच्चों के सामने, मैंने कहा काले जिन्होंने बच्चे जो पढ़ रहे हैं आप भविष्य के माता पिता हैं। अपने हमें तो जो होना तो हो गया, क्योंकि हमारे 80% संस्कार 10 साल के अंदर हो जाते हैं, बाकी केवल 20% है। हमारा पुराना है 16 साल, लेकिन घट के 10 साल हो गया। अब तो हम हो गए 20 साल 25 साल। लेकिन इन युवकों को कहता हूं, भारत के युवकों को, हे मेरे प्यारे युवकों, अगर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो उन बच्चों के सामने अपने माता पिता से भी अच्छा व्यवहार करो, नहीं तो उनको संस्कार पड़ जाएगा कि मेरा पिता जब अपने पिता कहना नहीं मानता तो मैं क्यों मानूं। हमारी भूल एक महान व्यक्ति को साधारण व्यक्ति बना देगी, वो इन्हीं बातों में रह जाता है। तो प्रिय आत्मन, इन व्यवहारिक बातों को ठीक रखोगे तो आप तो महान हैं, आपकी संतान भी महान बनेगी, समाज और देश का गौरव बढ़ाएगी। अस्तित्व, थोड़ा अध्यात्म में आ जाओ, ये सब की तैयारी होगी तभी बच्चा जो सुनेगा देखेगा करेगा। आप घर में आरती करेंगे वो भी करेगा, घर में आसन लगाएंगे वो भी करेगा। अस्तित्व, आपके कितने नाम यहां पर आप बैठे हैं, आप किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के मामा हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं, किसी अस्तित्व एक नाम अनेक। हमारी बेटी बैठी है, किसी की मां है तो किसी की भाभी है, किसी की पत्नी है, कितने नाम अस्तित्व। मैं पूछता अस्तित्व को पहचानना है? हां बताता हूं, अस्तित्व में न कोई नर है न कोई नारी। आप घर में सो गए, ये प्रकृति की अवस्था है। आप सो गए, ये प्रकृति की अवस्था है। वहां नर कौन नारी कौन? आपने चांदी में से घोड़ा बनाया, आपने चांदी में से हाथी बनाया, अब विज्ञान आ रहा है। अस्तित्व जब कोई आकार धारण करता है, अस्तित्व जब कोई आकार धारण करता है तो पूरा का पूरा उपस्थित है, मौजूद है। चांदी में से आपने घोड़ा बनाया, आकार से घोड़ा बना, लेकिन प्रियात्मन आपका विज्ञान कहता है आकार से घोड़ा बना लेकिन उपस्थिति पूरी चांदी की है। आपने चांदी में से हाथी बनाया, आकार से हाथी है लेकिन है पूरी चांदी। अब मेरा बेटा कहता है कि पिताजी एक घोड़े को शेर बना दो। घोड़ा सीधे शेर नहीं बनेगा, इसको फिर अस्तित्व में लाना पड़ेगा। घोड़ा अस्तित्व में आकर फिर चांदी बना और चांदी फिर शेर का आकार धारण करेगी। प्रियात्मन विज्ञान मान गया। जब तक हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है या शैतान बैठा हुआ है, समाधि में, भजन में, कीर्तन में किसी को मानते हो, राम का भजन करते करते राममय हो गए, कृष्ण का भजन करते करते कृष्ण हो गए, दुर्गा का भजन करते करते दुर्गा बन गए, जिसका भी भजन करोगे वही विराट बन जाएगा, अस्तित्व आकार लेगा। जैसे चांदी में से बना, अस्तित्व वही है। वेद क्या कहता है, यहां अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं, एकम सत विप्रा बहुधा भजन। वेद के इस मंत्र को याद रखना, अस्तित्व एक है, सत एक है, आकार अनेक है, लेकिन आकार अनेक होने से अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। आकार घटेगा बढ़ेगा, आकार मिटेगा बनेगा, लेकिन अस्तित्व वही का वही है। हे मेरे प्रिय आत्मन, शुरू में जो मैंने कहा तो उसी को फिर याद दिलाता हूं। आपने चांदी वाली बात तो समझ ली। जब आया एकम सत विप्रा बहुधा बदन, आपका जो आकार है, आप नर हैं, नारी हैं, बालक हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, राष्ट्रपति हैं, ये जो आकार आपने कर्मों से धारण किया, सब सो गए, ये प्रकृति की अवस्था है। प्रगाढ़ निद्रा में आए, कौन गुरु, कौन शिष्य, कौन राष्ट्रपति, कौन चपरासी, वहां अस्तित्व एक, चांदी एक, हम वहां बराबर हो गए। लेकिन साधना के द्वारा जब मैक्सिमम परमोच्च अवस्था प्राप्त करेंगे तो एक हो जाएंगे। अब वही फिर से बता दूं, विज्ञान बार बार दोहराया हूं। थॉमस एडिसन की बात करूं, सर सीवी रमन की बात करूं, कबीर की बात करूं कि शंकराचार्य जी की बात करूं, विज्ञान यही कहता है। अब यही ले लो, आप विद्वान हो, इस बात को जरा प्यार से समझें। आप विद्वान हो, आप सो गए, आपका ड्राइवर चार जमात पड़ा है वो भी सो गया। बात को बड़े प्यार से समझें। आप सो गए, आप विद्वान नहीं, उस अवस्था में आप मालिक नहीं। आपका ड्राइवर सो गया, चार जमात पड़ा नहीं, आपका ड्राइवर नहीं। हे मेरे प्रिय आत्मन, जब आप सो गए तो आप लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, विद्वान नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं, आप गरीब नहीं, आप अमीर नहीं, आप अस्तित्व। अस्तित्व में न नर है न नारी है। आपका लड़का आपके बगल में सोया है, न वहां कोई पिता न वहां कोई पुत्र, अस्तित्व में। लेकिन जागोगे तो फिर आकार धारण करोगे, मैं मालिक हूं, मैं पिता हूं, मैं विद्वान हूं। आज यही विज्ञान कहता है, जब हम वर्तमान में आए, जब हम अस्तित्व में आए, हम सर सीवी रमन हैं कि थॉमस एडिसन हैं, हम कबीर हैं कि शंकराचार्य जी हैं, हम किसान हैं कि वाइस चांसलर हैं, हम उस अस्तित्व में एक हो जाते हैं। वही अस्तित्व साधना के द्वारा जब बालक बनता है, जब वर्तमान आता है, तो डिग्री है कि नहीं, जो चाहेगा कर सकता है, उसके संकल्प इतनी ताकत है, जो चाहे आकार धारण कर सकता है। राष्ट्रपति बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, फिलोसफर बनना, जो भी। इसलिए हे मेरे प्यारे बच्चों, भारत के इनको, आप वर्तमान में आ जाओ, बालक बन जाओ, फिर से सहज बन जाओ, और सहज बन करके वर्तमान का जो संकल्प है वही भविष्य है। आज जो सोचोगे वही कल मिलेगा। आज हल्का सोचोगे तो कल हल्का मिलेगा। आज अगर अपने को बलवान मानते हो तो कल आपका स्वागत उसी तरह से होगा। आप क्या बनना चाहते हो वही विचार करो, और आज करो और अभी करो और सहज बन के करो। और मनीषानंद गारंटी देते हैं, जो बनना चाहोगे बन जाओगे, ज्योतिष फेल हो जाएगा। हमने कितनों किया है, ज्योतिष में कहता है ठीक है, ज्योतिष गलत नहीं, वो व्यवस्था है, हमारी कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन आपको एक व्यवस्था दे रहा हूं। बच्चे आते हैं बड़े प्यार से, महाराज जी मैं फर्स्ट क्लास आ जाऊंगा। मैंने कहा मैं आज अगर आपका दो चार क्वेश्चन से मैं जानना चाहूंगा आज फर्स्ट क्लास आ सकते हो? नहीं नहीं महाराज जी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 3 दिन का अंतर है, उसमें पढ़ लूंगा। अरे आज जो नहीं पढ़ रहा हो 3 दिन क्या पढ़ेगा? या सोचो अपने आप को कितना धोखा दे रहे हो। मैं सबकी बात कर रहा हूं। आपने सुना है, आप किसी भाषा के विद्वान हैं, कितनी सुंदर पुस्तक लिखे हैं,